नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर बुनियादी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई ने भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ओमान के उप प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर सईद मोहम्मद अहमद अल साकरी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण को बड़े पैमाने पर विकसित करने की भारत की क्षमताओं पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक निवेशकों के लिए मजबूत अवसर प्रदान करती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कल दावोस में इस सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किए गए इन समझौता ज्ञापनों से अलग अलग क्षेत्रों में 15 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कल 6 महिलाओं सहित 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने पुलिस ने महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनके पास से एक AK-47 राइफल, इंसास राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का काम बाधित नहीं हुआ है। हालांकि विभिन्न जिलों से कई हिंसक घटनाओं की खबरें आई हैं। चुनाव आयोग को भेजी गई साप्ताहिक रिपोर्ट में SIR सुनवाई से संबंधित घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। राज्य में चल रही प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी देखरेख राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय विशेष गहन पुनरीक्षण में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हवाई किरायों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि पर भी चिंता जताई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में की जा रही अत्यधिक बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया है। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी गतिविधियों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहरे नाव क्षेत्र में एक रेस्तरां में हुए विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में करीब 40 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रेल नेटवर्क ऑपरेटर के अनुसार ये घटना दक्षिणी हिस्से के एडमियो शहर के पास हुई। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू हो रहा है। इस संस्करण में कोच और तकनीकी सहायकों समेत 1,000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।